नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की सरकार गठन को लेकर आज शाम नई दिल्ली में बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आईएनडीआईए के नेताओं की भी आज शाम राष्ट्रीय राजधानी में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस्तीफा दिया। देश में वर्ष 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख टन से अधिक होने का अनुमान और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला आयरलैंड से। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। भाजपा ने अकेले 240 सीटें हासिल की हैं। तेलुगुदेशम पार्टी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। आईएनडीआईए ने 233 सीटें जीती हैं। अन्य के खाते में 18 सीटें गई हैं। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 29 और डीएमके ने 22 सीटों पर विजय हासिल की है। इस बीच एनडीए की आज राजधानी दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार गठन के लिए भावी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी है और उन्हें एनडीए की आज की बैठक के बारे में बताया है। श्री पासवान बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले आज सवेरे अमरावती में अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने दोहराया कि ये जीत उनकी पार्टी, जनसेना और भाजपा के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। श्री नायडू ने यह भी कहा कि एनडीए आंध्र प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जाएगा। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए अपने निकट सहयोगियों राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह तथा अन्य सहयोगियों के साथ पटना से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उधर आईएनडीआईए की आज शाम राजधानी दिल्ली में बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चुनाव नतीजों और आगे की रणनीति पर विचार के लिए शाम 6 बजे गठबंधन की बैठक होगी। और जानकारी के साथ हैं अभिषेक कपिल।
लोकसभा चुनाव में जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, गुजरात में गांधीनगर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजस्थान में कोटा से ओम बिड़ला, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। भाजपा के अन्य प्रमुख विजेताओं में गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, उन्नाव से स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी, मेरठ से अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी और गोरखपुर से रवि किशन हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट से डिंपल यादव, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, केरल में वायनाड और उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जीत हासिल हुई है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में झारखंड में खूंटी से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उत्तर प्रदेश में अमेठी से स्मृति ईरानी, जम्मू कश्मीर में बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग सीट से पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा ने 33, कांग्रेस ने 6 और राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटें जीती हैं। अपना दल सोनीवाल, ADAL और आजाद समाज पार्टी काशीराम ने 1-1 सीट जीती है। राज्य में बहुजन समाज पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं हुआ है। बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती हैं। जीतने वाले भाजपा नेताओं में डॉक्टर संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5, राष्ट्रीय जनता दल ने 4, कांग्रेस ने 3 और मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। दिल्ली में भाजपा ने सभी 7 सीटों पर विजय हासिल की है। बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को हराकर जीत हासिल की। प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता जय प्रकाश अग्रवाल को हराकर चांदनी चौक सीट जीती है। रामवीर सिंह विधूड़ी दक्षिणी दिल्ली से जीते। मनोज तिवारी ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को हराया है। हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली सीट, कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी दिल्ली सीट और योगेंद्र चंदोलिया ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर जीत हासिल की।
पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3, शिरोमणि अकाली दल ने 1 और निर्दलीय ने 2 सीटें जीती हैं। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस को 5-5 सीटें हासिल हुई हैं। चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन को हराया है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2-2 सीटें जीती हैं, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। लद्दाख की एकमात्र संसदीय सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार हाजी हनीफा ने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 4 सीटों पर कब्जा किया है। जीतने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। उत्तराखंड में भी भाजपा ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की है। राजस्थान की सभी 25 सीटों में से भाजपा ने 14 सीटों पर जीत हासिल की और 8 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गईं। 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। गुजरात में भाजपा ने 26 में से 25 सीटें हासिल कर प्रचंड जीत दर्ज की है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। और राज्यों के परिणामों के बारे में जानकारी दे रखे हैं मुकेश कुमार बल।
महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भाजपा ने 9 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 13 सीटें हासिल की। शिवसेना उद्धव ने 9, शिवसेना SHS ने 7, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार ने 8 सीटें जीती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय को 1-1 सीट पर विजय प्राप्त हुई। गोवा में कांग्रेस ने दक्षिण गोवा सीट जीत ली है, जबकि भाजपा ने उत्तरी गोवा सीट जीती है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। ओडिशा में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही। झारखंड की 14 सीटों में से भाजपा ने 8, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी ने 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं भाजपा ने 12 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आई है। असम में भाजपा ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 3 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल तथा असम गण परिषद ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। त्रिपुरा में भाजपा ने सभी 2 सीटें जीत ली हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। मणिपुर की 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई हैं। वहीं मिजोरम की एकमात्र सीट जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी ने जीती है। नागालैंड की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई है। मेघालय की 2 सीटों में से 1 कांग्रेस और 1 वॉयस ऑफ पीपल्स पार्टी की झोली में गई है। सिक्किम की एकमात्र सीट सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को मिली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र सीट भाजपा उम्मीदवार विष्णुपद रे को मिली है। दादरा और नगर हवेली सीट भाजपा उम्मीदवार कलाबेन डेलकर ने जीत ली है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार उमेश भाई बाबू भाई पटेल ने दमन और दीव सीट जीती है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा क्षेत्रों में से तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है। तेलंगाना में 17 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस ने 8-8 सीटें हासिल की हैं। AIMIM को 1-1 सीट पर विजय मिली है। तमिलनाडु
जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का पूरा समर्थन करती है। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की आज की बैठक में शामिल होंगे और एनडीए तथा प्रधानमंत्री को समर्थन पत्र सौंपेंगे। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद वहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 147 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा ने 78 सीटें जीती हैं। सत्ताधारी बीजू जनता दल को 51 सीटों के साथ हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने 14 और अन्य ने 4 सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस बीच राज्य में सरकार गठन और भाजपा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के बारे में विचार विमर्श के लिए भाजपा नेताओं की भुवनेश्वर में बैठक हो रही है। एक रिपोर्ट।
हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजद की भाजपा के हाथ हार के बाद उड़ीसा सत्ता के राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री पटनायक उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री है, जिन्होंने 24 साल और 3 महीने में लगातार 5 कार्यकालों तक सेवा की। इस बीच सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के लिए भाजपा के चेहरे पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 6 बार के सांसद जुएल ओराम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। श्री ओराम ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो वो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अन्य कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे। यह बैठक लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के एक दिन बाद हुई है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सांसदों की शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी, तेलुगुदेशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, शिवसेना, शिंदे गुट और एनडीए के अन्य घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसदों के शामिल होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में वर्ष 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का कुल उत्पादन 1,367 लाख टन हो सकता है, वहीं गेहूं का उत्पादन 1,129 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 लाख टन से अधिक है। आकाशवाणी से बातचीत में कृषि विशेषज्ञ डॉ संत कुमार चौधरी ने बताया कि तुअर दाल के उत्पादन को लेकर 34 लाख टन का अनुमान रखा गया है।
किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमानित जारी किया गया है, इससे ये दर्शाता है कि लगभग सभी फसलों में वृद्धि हो रही है। कृषि प्रधान देश है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मीट्रिक टन अधिक है। ये जो उत्पादन अधिक दिख रहा है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ है। गवर्नमेंट के पॉलिसी, गवर्नमेंट के जो सपोर्ट मिल रहे हैं किसानों को, इससे किसान और किसानों ने जो अथक प्रयास किया है, इसका ये फल है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल रात सहस्त्रताल मार्ग पर खराब मौसम के कारण रास्ता भटकने से 4 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। 10 लोगों को बचा लिया गया है, अन्य को बचाने का प्रयास जारी है। राज्य आपदा मोचन बल और वायुसेना आज तड़के से बचाव और राहत अभियान चला रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि बचाव अभियान जारी है।
अभी एरियल रेस्क्यू जो हम लोगों ने किया है उसके तहत 13 लोगों को हमने इवैक्यूएट कर लिया है और वो अलग अलग स्थानों पर है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है और सुरक्षित है, और बाकी के लिए हमारा वो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है और चलते रहे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और पर्यावरण के मुद्दे पर कार्य करने को लेकर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने बुद्धा जयंती पार्क में आज पौधारोपण भी किया। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्वकप के ग्रुप मुकाबले में आज शाम न्यूयॉर्क में भारत का सामना आयरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले शनिवार को इसी मैदान पर भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 60 रन से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की सरकार गठन को लेकर आज शाम नई दिल्ली में बैठक। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद INDIA के नेताओं की भी आज शाम राष्ट्रीय राजधानी में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस्तीफा दिया। देश में वर्ष 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख टन से अधिक होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और नई सरकार बनने तक कार्यभार संभालने को कहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।